ओम शांति। आज बाबा ने बताया कि ब्रह्मा बाप के प्यारे कौन हैं, जिनका ब्राह्मण कल्चर से प्यार है। और ब्राह्मण कल्चर किसे कहेंगे? ब्राह्मण कल्चर क्या है, किसे कहेंगे कि ये ब्राह्मण कल्चर है?
अनिल भाई एक मिनट, जो टीचर बहने दोपहर के बाद रुकने वाले, जो जाने वाले वो नहीं, जो रुकने वाले हैं शाम तक या शाम को, यहाँ जो टीचर बहने हैं वो यहाँ पीछे आ जाएंगे, अभी यहाँ मेरे से मिलेंगे अभी।
और दूसरा है, एक तो है ब्राह्मण कल्चर से प्यार, दूसरा कल्चर कौन सा होता है? ब्राह्मण कल्चर के अलावा दूसरा कल्चर कौन सा होता है? बताएंगे दूसरा कल्चर क्या है? तो जो देह के धर्म पर आधारित है ना, जो देह अभिमानी होकर के हम कर्म करते हैं, देह अभिमान के आधार पर व्यवहार करते हैं। और ब्राह्मण कल्चर अर्थात जो ब्रह्मा बाबा का है ना, ब्रह्मा बाबा किस तरह से रहते थे, ब्रह्मा बाबा कैसे करते थे, अभी भी ब्रह्मा बाबा कैसे हम सबकी पालना कर रहे हैं, तो इसका आधार क्या है? कोई देह का आधार नहीं है, या जो कहते हैं ब्लड कनेक्शन या फलाना क्षेत्र है, ये नहीं। यहाँ क्या है? रूहानी है ना। तो रूहानी संबंध के आधार पर जब हम व्यवहार करते हैं, कर्म में आते हैं, तो इसे कहेंगे हम ब्राह्मण कल्चर, जिसमें हम क्या समझते हैं, जैसे आपस में हम क्या होते हैं, समझते हैं अपने को भाई बहन। दूसरा क्या है? आत्मा के नाते से भाई भाई। तो यही मुख्य दो संबंध ब्राह्मण कल्चर में होते हैं। तो कोई भी हो इस दुनिया में, कहीं का भी कोई व्यक्ति हो, कोई भी आत्मा हो, उसको हम क्या समझते हैं? हमारे भाई हैं, हमारी बहन है। तो ये है ब्राह्मण कल्चर। दूसरा, बाबा ने आज कहा कि जब हम, जैसे कई बार हम सोचते हैं ना कि हम ये कार्य करें, कोई कर्म, कुछ गलत कर्म ना हो, हमेशा अच्छा ही कर्म हो, चिंतन करना पड़ता है या समझना पड़ता है। लेकिन बाबा ने आज कहा कि यदि आप अकाल तख्त पर है ना, अकाल तख्त पर स्थित होकर कर्म कराते हैं कर्म इंद्रियों से, तो ऑटोमेटिक क्या होता है? ऑटोमेटिक ही श्रेष्ठ कर्म होता है, सोचना नहीं पड़ता है कि हमको ये करना है, है ना। तो जो इसीलिए हम इतना ध्यान रखें, है ना, सबसे पहले हम स्वराज्य अधिकारी बने, है ना, ब्रुक्ति के तख्त पर स्थित हो जाएं, और फिर हम किसी कार्य में लगे। इसीलिए हमेशा पहले, सबसे पहले ध्यान दें कि हम अकाल तख्त नसीन हैं। यदि अकाल तख्त नसीन नहीं है तो क्या होगा? फिर मिक्सअप है ना, मिक्सचर हो जाएगा इसमें। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि एक तो अकाल तख्त पर यदि नसीन है, अकाल तख्त नसीन है, तो क्या होगा? एक तो श्रेष्ठ कर्म होंगे, और जब श्रेष्ठ कर्म होगा तो क्या होती? खुशी मिलती है, और खुशी मिलने से क्या होती? शक्ति, खुशी शक्ति में ट्रांसफर हो जाती है, यानी सेटिस्फैक्शन है ना। जितना आप सेटिस्फाइड होते हैं तो ये पावर बन जाता है ना। इसी को कहते हैं जीवन मुक्ति, जो संतुष्टता है ना, इसी को जीवन मुक्ति भी कहते हैं। कि अर्थात आपको न पिछली कोई बात याद हो, न भविष्य की, वर्तमान में केवल आप उपस्थित हैं, वर्तमान में इंजॉय कर रहे हैं, और कोई आकांक्षा नहीं है, और कोई इच्छा नहीं है, है ना। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जो ज्ञान की पराकाष्ठा की बात बाबा ने कही ना, कि ज्ञान की पराकाष्ठा यदि नहीं हो तो क्या होगा? नई नई आशाएं उत्पन्न हो जाती है। नई नई आशाएं क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्यों उत्पन्न हो जाती है? क्योंकि हम वर्तमान में नहीं है, या तो हम फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, तो ये हमारे संकल्पों को अपने तरफ प्रवाहित कर देती है। तो इसीलिए कहते हैं कि ज्ञान की जो पराकाष्ठा है ना, जब ज्ञान की पराकाष्ठा होगी अर्थात क्या होगा, स्थिति क्या होगी, अचल अडोल। क्यों होगी स्थिति अचल अडोल, क्योंकि आज बाबा ने क्या बताया कि ज्ञान की पराकाष्ठा अर्थात केवल ज्ञान नहीं, ज्ञान के साथ साथ योग है ना। यदि योग नहीं है, योग युक्त नहीं है, तो ज्ञान काम नहीं करता है। इसीलिए और जब ज्ञान भी हमारे पास, जैसे कहते हैं ना कि एक है निश्चय, निश्चय है ना, हमको निश्चय हो गया, लेकिन यही निश्चय जब बहुत बढ़ता है ना, जब हमारा निश्चय बहुत बढ़ता है तो क्या हो जाता है, इसमें यही निश्चय किस में बदल जाता है, नशा में, नशा बन जाता है ना। तो जैसे बाबा एग्जांपल देते हैं कई बार कि जैसे मान लीजिए कोई दुनिया में पीते हैं ना, पीते हैं, तो जब अगर मान लो वो केवल रखे हैं पीते नहीं हैं, तो उनको नशा चढ़ेगा, भले कितना ही बोतल रखी हो, नशा कब चढ़ता है, पीते हैं तो। ऐसे भले आपके आगे मुरली है, मुरली ऐसे रखी, एक मुरली है, नशा चढ़ेगा, निश्चय होगा, केवल एक बार जैसे वहां पीते हैं, पीते हैं तो नशा चढ़ता, यहां कैसे पीते हैं, बुद्धि के द्वारा, जितना हम सुनते हैं, जितना स्वीकार करते हैं, फिर वो अपना वर्क करता है, हमको ये नहीं सोचना पड़ता है कि ये ऐसा करे, है ना। जैसे मान लो कोई पॉइजन खा ले, अनजान में भी अगर कोई विष ले लेता है या कोई पॉइजन खा लेता है, तो फिर क्या कहे कि हमने तो अनजान में खाया है ना, उसका असर तो नहीं होना चाहिए। लेकिन आप जानबूझ के खाएं या अनजान में खाएं, अब वो अंदर गया तो क्या करेगा, वो वर्क करेगा, आपको कुछ नहीं करना है, अब ऑटोमेटिक जो करेगा वही करेगा, है ना। तो ऐसे जो बुद्धि है ना, बुद्धि से भी जो हम स्वीकार कर लेते हैं, जो भी बात हमारे बुद्धि में चली गई, कोई भी बात हमने सुन लिया, देख लिया, मान लीजिए कोई बात अच्छी नहीं है और आपने देख लिया, तो जब जब आप वो आपको याद आती रहेगी तो क्या होगी, वैसी स्थिति आपको बनती रहेगी। इसीलिए कहते हैं दुनिया में भी कि यदि कोई किसी के गलत कर्म को देखता है या पाप कर्म को देखता है तो क्या कहते हैं, अपने को भी श्रापित समझते हैं कि जरूर हमारा कोई ऐसा कर्म है जो मैंने इनका ये कर्म देखा। तो इसीलिए अगर आप मुरली मान लीजिए एक बार पढ़ते हैं, एक बार आपने दिन में मुरली पढ़ा, फिर उसको आपने दो बार पढ़ा, फिर एक बार और पढ़ लिया, तो जब रोज आप मुरली तीन चार बार पढ़ते हैं, पांच बार पढ़ते हैं, तो कम से कम तीन बार या चार बार पढ़ते हैं। जैसे कई लोग क्या कहते हैं, हमारा तो योग नहीं लगता है, चलो योग मानते हैं कि उसमें आपको मेहनत है, आत्मा समझना पड़ता है, फिर बाबा को याद करना पड़ता है, लेकिन मुरली तो पढ़ सकते हैं ना, कि इसमें भी कहेंगे कि हम मुरली नहीं पढ़ सकते, तो भले आपका दिल लगे या ना लगे, मुरली क्या करें, पढ़ें। तो एक बार पढ़ेंगे, दो बार पढ़ेंगे, तो तीन बार पढ़ेंगे, तो ये क्या है, धीरे धीरे ना आपकी बुद्धि में मुरली के अलावा कुछ नहीं रहेगा, और यही जो है निश्चय, आपका निश्चय बढ़ता जाएगा, और निश्चय बढ़ते बढ़ते नशा बन जाएगा, नशा के रूप में चेंज हो जाएगा। इसीलिए बाबा ने क्या कहा कि जिनकी ज्ञान की पराकाष्ठा होगी तो क्या होगी, आपके स्वप्न भी है ना, जो विकल्प आते हैं वो भी नहीं आएंगे, और स्वप्न भी कैसे होंगे, श्रेष्ठ स्वप्न होंगे, स्वप्न भी ऐसे आएंगे जो आपको आपकी पूरी दिनचर्या को बदल देंगे। जैसे मान लो आप रात को सोए हुए हैं और आपको नींद आती, जैसे नींद में आपने स्वप्न क्या देखा कि ब्रह्मा बाबा आए, चाहे बाबा आए, बाबा ने मेरे हाथ को पकड़ा, हाँ, तो अगर आपने ये स्वप्न देख लिया तो पूरा दिन भूलेंगे आप, तो ये स्वप्न क्या करेगा, आपकी दिनचर्या को स्वतः चलाएगा। तो इसीलिए हम इतना इस ज्ञान में मगन हो, इतना इसको रिवाइज करें। जब आप रिवाइज करते हैं ना, तो रिवाइज करने से स्वतः रियलाइज होता है, और जब रिवाइज है रियलाइज है तो ये कहते हैं स्मृति स्वरूप। और जब हम स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो उसके आधार पर हमारे संकल्प या विकल्प उत्पन्न होते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी, अर्थात आप इतना मुरली को पढ़ रहे हैं बार बार कि उसमें आपका निश्चय आ रहा है और इससे स्वतः योग युक्त हो जाते हैं। इसीलिए कहते हैं ना, जब आप मुरली पढ़ते हैं ना तो ऑटोमेटिक सेमी योग हो जाता है, आपको लगेगा जैसे योग लगा है, बाबा सामने दिखाई दे रहा है, सम्मुख बाबा दिखाई देगा, तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो मुरली पढ़ते जाओ। तो इसके आधार पर फिर क्या होगा, आपके स्वप्न चेंज हो जाएंगे, आपको स्वप्न में भी मुरली की बातें याद आएंगी, मुरली की श्रीमत याद आएगी, सामने बाबा दिखाई देगा, आपका कंपेयर भी बाबा से होगा करेंगे आप। कहते हैं ना कि बाप समान बनना है। तो इसीलिए जब ज्ञान की पराकाष्ठा हो जाएगी तो उल्टे सुलटे संकल्प विकल्प नहीं होंगे, है ना। तो इसीलिए ज्ञान की पराकाष्ठा के लिए पहली चीज है कि आप रिवाइज अवश्य करें, उसको रियलाइज अवश्य करें। जैसे मुरली सुनते हैं तो सामने दिखाई दे, है ना, सामने दिखाई दे। जैसे आज बाबा ने कहा कि बाबा आते हैं तो क्या करते हैं, द्रौपदी के क्या करते हैं, पांव दबाते हैं। तो यहां कौन से पांव दबाते हैं, स्थूल पांव तो नहीं दबाते ना, कि थकते हैं स्थूल में भी। देखो आप कितना भी कार्य करो, बहुत बिजी हैं, आपने बहुत मेहनत की है, बहुत सेवा की है, और कोई आके कह दे कि ये क्या किया आपने, और ही बिगाड़ दिया आपने, तो आपको जो थकान हुई है ना उसकी डबल थकान और हो जाएगी, कि अरे इतना मेहनत किया, इतना मुश्किल से किया और ये रिजल्ट है इसका। और मान लो आपने बहुत मेहनत किया, बहुत सेवा किया, और कोई आके आपकी शाबाशी दे कि आपके ये करने से इतना फायदा है, यज्ञ को इतनी बेनिफिट है, आपने बहुत ही श्रेष्ठ कार्य किया, आपकी अगर हर एक सेटिस्फाइड है, आपके पास सीनियर्स हैं जो बड़े हैं वो भी खुश होते हैं कि हाँ आपने बहुत अच्छा किया है, तो क्या होगा, आज थकान कैसे हो जाएगी। तो थकते किससे हैं, तन थकता हो तो चलो ठीक है, ये थकान तो फिर भी उतर जाती है। सबसे बड़ी थकान किसकी है, बुद्धि की, है ना। तो इसीलिए कहते हैं बुद्धि कोई भी बात नहीं। जैसे कई लोग क्या कहते हैं कि हमारे तो हम क्या करें, संकल्प ही हमारे बस नहीं होते हैं, संकल्प ही चलते ही रहते हैं ऑटोमेटिक, हम नहीं भी चाहते हैं तो चलते हैं। कारण क्या है, कारण क्या है, प्रैक्टिकल। आप देखो एक एग्जांपल है, जैसे मान लो आप गुलाब का प्लांट है, गुलाब का पौधा है, उसके पास जाएंगे तो क्या मिलेगा आपको, खुशबू, खुशबू मिलेगी। और मान लो कहीं बबूल का पेड़ है, बबूल के पेड़ के नीचे जाओगे तो क्या लगेंगे, कांटे। तो आप जहां जाते हैं, है ना, वैसी अनुभूति होती है। तो ऐसे हम भी जहां बुद्धि से जाते हैं ना, तो सुख दुख इस पर आधारित है। इसीलिए बाबा ने कहा कि रावण क्या करता है, श्रापित करता है, और बाबा क्या करते हैं, वर्षा देते हैं। वर्षा क्या देते हैं, सतयुग का वर्षा तो है ही, इस समय क्या देते हैं, सुख शांति, हाँ सब जो भी ईश्वरीय प्यार जो भी है वो हमें बाबा स्वतः देते हैं। जैसे आप देखो, आप बाबा के रूम में बैठे हैं, आधा घंटा आप पावरफुल योग में बैठ गए हैं, उसके बाद कैसी स्थिति होती है, और कुछ चाहिए। और मान लो आप बॉडी कॉन्शियस में हैं, देह अभिमान में आ गए, और याद करो कि एक साल पहले इसने हमको क्या किया था, इसने कैसे हमारा इंसल्ट किया था, अब उसके इंसल्ट को तो जितना उसने हमारा इंसल्ट किया था ना, उसका जितना हम चिंतन करेंगे उतना हम क्या होंगे, दुखी होते गए। क्यों, क्योंकि हम कहां चले गए, हाँ ये रावण, यही रावण हो गया ना, हम रावण के पास गए तो दुख देते रहेंगे, हम उसकी जैसा जैसा सोचेंगे उसको हम अनुभूति करते रहेंगे। अच्छा, वही हम बुद्धि से बाबा के पास जाते हैं, और जब बाबा को याद करते हैं, बाबा की श्रीमत को याद करते हैं, उसके आधार पर हम चिंतन करते हैं, फिर क्या हमें मिलता है। तो ये डिपेंड किस पर है कि हम बुद्धि से कहां जाते हैं। तो सारा दारोमदार बुद्धि पर ही है। या तो हम बाबा से वर्षा लें या तो हम रावण से श्रापित हों, दोनों हमारी बुद्धि पर डिपेंड है। तो इसीलिए हम सबसे पहले क्या करें, बुद्धि को फोकस करें, बुद्धि के द्वारा किसी को देखें, है ना। तो जितना जितना हम बुद्धि से किसी भी सब्जेक्ट पर या किसी पर स्थिर करेंगे तो हमारे संकल्प स्वतः वैसे ही चलेंगे। जैसे कई बार बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे कोई माँ होती है तो कोई माँ को ट्रेनिंग थोड़ा देते हैं कि बच्चे को ऐसे रखना होता है, ऐसे खिलाना होता है, ऐसे है? जब माँ सो भी रही होती है, मान लो उसके पास छोटा बच्चा भी है तो कैसे सोती है, सोते हुए भी उसको ध्यान रहता है कहीं बच्चे का हाथ ना दब जाए, बच्चे का कुछ ये ना दब जाए। सोते सोते कितना ध्यान ऑटोमेटिक होता है, करना तो नहीं पड़ता ना, है ना। तो कारण क्या हुआ, ये स्मृति हमारी बुद्धि, बुद्धि में ये स्मृति आ गई कि मैं माँ हूं, तो हमारे ऑटोमेटिक हर कर्म माँ के हिसाब से चलेंगे। खुद भोजन नहीं करेंगे लेकिन बच्चे को जरूर ध्यान होगा, बच्चा खाया कि नहीं, बच्चा तैयार हुआ कि नहीं, सारा ध्यान हमारे माँ के हिसाब से चलने लगता है। तो ये है हमारी बुद्धि जो हमारा स्वरूप है, रियलाइज। इसीलिए कहते हैं कि जो ज्ञान की पराकाष्ठा है ना, तो ज्ञान की पराकाष्ठा में क्या हो जाता है, हम उसका स्वरूप बन जाते हैं, स्वरूप बन जाते हैं उसका। जब हम उसका, जैसे मान लीजिए आप कुछ नहीं, आप बैठ जाते हैं, आप फील करते हैं कि मैं देवी हूं या देवता हूं, आप इस स्वरूप में केवल बैठ जाओ, 10 सेकंड 10 मिनट बैठ जाओ, आप बैठ गए, आप फील करो कि मैं फरिश्ता हूं। आप कुछ नहीं तो देखो अपने को सिर से लेकर पांव तक लाइट के रूप में, तो फरिश्ता समझने से क्या हुआ, इसकी अनुभूति स्वतः होने लगेगी ना, स्वतः होने लगता है इसे। तो यदि हम देवी देवता समझते हैं तो ऑटोमेटिक वो स्वरूप, वो गुण, वो कर्म हमारे अंदर आने लगते हैं। तो इसीलिए बाबा का जब हम की मुरली जब सुनते हैं तो उस मुरली के आधार से हमारे जीवन में क्या परिवर्तन लाना है उसको देखें, तो इसके आधार पर हम संपूर्णता की तरफ बढ़ेंगे। अदरवाइज हम एक बार हमने केवल मुरली सुन लिया वो तो भूल जाएगी बहुत सारी बातें। अगर आपको मुरली की दो बातें भी याद हैं और पूरे दिन भर यही दिनचर्या में शामिल है कि इसे हम जब बोलते हैं तो कैसे इसको यूज करना है, जब चलते हैं तो कैसे यूज करना है, जब हम भोजन करते हैं तो कैसे इसको यूज करना है, जब हम सोते हैं तो कैसे, तो ये जो आपका ऐसे संकल्प चलने लगता है, ऐसे चिंतन चलने लगता है, तो ऑटोमेटिक है ना, ऑटोमेटिक आपका स्वरूप बनने लगता है और ज्ञान की पराकाष्ठा अपने संपूर्ण रूप में होती है। दूसरा बाबा ने आज कहा कि जैसे देखो कि सतयुग त्रेता है ना, सतयुग त्रेता ये जो सृष्टि चक्र का जो आधा भाग है इसमें भी लगभग 20-21 जन्म होते हैं, है ना, और उतने में ही द्वापर और कलयुग में 63, ये कैसे हो जाता है, आधा आधा में इतना है 21 और इसमें 63, कारण क्या। तो जैसे बाबा कहते हैं ना, कई बार जो कहते हैं ना कि योग बल के आधार पर संतान उत्पन्न होती है, सतयुग में भी है, तो इसको बाबा क्या कहते हैं, कई बार योग बल किसको कहते हैं, जो आत्मिक स्थिति है, आत्मिक बल है, उसको ही बाबा कहते हैं योग बल, है ना। तो ये जो वहां की जो रचना है, वहां की जो वहां का जो जीवन चक्र चलता है वो किसके आधार पर है, आत्मिक स्थिति के आधार पर। तो जब आप देखो, आप यहां भी देखेंगे ना, कहते हैं किसी की भी लाइफ किससे मापी जाती है, वर्ष में नहीं, कैसे मापेंगे कि इनकी उम्र कितनी बड़ी है, मालूम है कैसे मापते हैं। वास्तव में यदि आप किसी विद्वान से पूछेंगे या किसी से भी तो कैसे मापते हैं, श्वास के आधार पर, श्वास के आधार पर किसी के जीवन को मापते हैं। जैसे कहते हैं ना, कछुआ होता है वो बहुत धीमे धीमे श्वास लेता है, इसीलिए वो बहुत लंबा जीता है, 200 साल 250 साल लंबा। और जो बहुत फास्ट सांस लेते हैं वो उनकी आयु कम हो जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं ना कि जब आप योग युक्त होते हैं तो आपकी आयु बढ़ती है, क्योंकि जब हम बाबा की याद में स्थित होते हैं तो क्या होते हैं, बाबा की याद में स्थित होते ही हमारे संकल्प बहुत कम चलते हैं, और जब संकल्प कम चलते हैं ना तो हमारी श्वास भी धैर्यवत हो जाती है, श्वास हमारी लंबी होती है। जैसे कहते हैं एक मिनट में अगर 15-20 बार श्वास लेते हैं ना, लेकिन आप शांति से हैं, धीरज से हैं, तो आपकी ये श्वास की गति कम हो जाएगी, एक मिनट में 5 बार होगी, 6 बार होगी, तो इससे आपकी आयु बढ़ेगी, है ना। तो ये इसका आधार होता है कि अब इसीलिए कहते हैं कि आध्यात्मिक व्यक्ति की पहली निशानी क्या कहते हैं, धैर्यवत, धीरज। सबसे पहले गुण धीरज आना चाहिए, और धीरज अर्थात शांति, है ना। तो जब हम बाबा की बातों को सुनते हैं, मुरली को सुनते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले धीरज ही आता है, घबराएंगे नहीं कोई बात, है ना। जैसे मम्मा को किसी ने कहा, मम्मा अभी ट्रेन छूट जाएगी इसीलिए आप थोड़ा तेज चलो, मम्मा ने क्या किया, स्पीड बढ़ाया नहीं, चाल में, क्योंकि ट्रेन भले छूट जाएगी दूसरी ट्रेन तो मिलेगी, लेकिन जो हमारी स्थिति चली गई वो स्थिति कोई हमारी हमको नहीं दे सकता। तो इसलिए इतना ध्यान हमारा स्थिति के ऊपर रहेगा, है ना। तो इसके आधार पर है कि हमारी आयु बढ़ जाती है, जितना आप धैर्यवत होंगे, जितना धीरज में होंगे। जैसे जानकी दादी को अस्थमा था, तो पहले ही बोल दिया था कि इनकी आयु बहुत कम है, लेकिन दादी ने योग बल से, है ना। तो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है कि हम जितना योग युक्त होंगे तो हमारी आयु बढ़ेगी। तो इस ओम शांति।